ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर कल 62.37% से ज्यादा मतदान हुआ है। मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा और तमाम क्षेत्रों के मतदाताओं ने गर्मी के बावजूद मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर 77.57% से अधिक, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 58.49% से अधिक, बिहार की 4 सीटों पर 48% से अधिक, राजस्थान की 8 संसदीय सीटों पर करीब 57%, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर करीब 55%, असम की 5 सीटों पर करीब 72% और तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर करीब 54% और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर करीब 63% मतदान हुआ। त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर करीब 80% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। इस चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 54 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होगा। उम्मीदवार सोमवार तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम बृहस्पतिवार को शुरू होगा। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 संसदीय सीटों के लिए चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होगा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में एक ही चरण में होने वाले सभी 175 विधानसभा सीटों और उड़ीसा में पहले चरण में 28 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई। वहीं राजधानी दिल्ली में भी अगले महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली में छठे चरण के तहत मतदान के लिए अधिसूचना 19 अप्रैल को जारी होगी। 25 मई को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देश के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। ये पिछले वर्ष चौथे स्थान पर था। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने ये जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। कुलपति ने संघ लोक सेवा आयोग 2023 के परिणामों में विश्वविद्यालय के 2 पूर्व विद्यार्थियों के चयन पर भी खुशी जाहिर की। क्यूएस वर्ल्ड एक वार्षिक प्रकाशन है जो विषयों के आधार पर विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करता है। उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वॉरहेड और एक नए एंटीक्राफ्ट मिसाइल का पश्चिम तट क्षेत्र में परीक्षण किया है। इससे अमरीका और दक्षिण कोरिया में बढ़ रहे तनाव का मुकाबला करने के लिए सैन्य शक्ति का विस्तार हुआ है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बताया है कि आज के परीक्षणों ने बेहतर लक्ष्य हासिल किया। उत्तर कोरिया ने फरवरी महीने में भी इसी तरह के परीक्षण किए थे, लेकिन उस समय क्रूज मिसाइल और एंटीक्राफ्ट मिसाइल का उल्लेख नहीं किया गया था। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने जोर देकर कहा है कि ये परीक्षण यांगयांग नियमित सैन्य विकास गतिविधियों का भाग थे। G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए ईरान पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। उन्होंने दोनों पक्षों से संघर्ष से बचने का आग्रह किया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने इटली के कैप्री में औद्योगिक देशों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह नवीनतम घटनाक्रम को संबोधित करने के लिए 3 दिवसीय बैठक का एजेंडा बदल दिया गया है। इससे पहले कल इसराइल ने अपने पर किए गए हमले के जवाब में ईरान पर हमला किया। अमरीका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल घटक उपलब्ध कराने के लिए चीन की 3 कंपनियों और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन कंपनियों ने पाकिस्तान को लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम सहित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए मिसाइल में प्रयोग होने वाली सामग्री उपलब्ध कराई। मौसम विभाग ने उड़ीसा पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में सोमवार तक भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड में भी अगले 2 दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में अगले सप्ताह तक हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी तथा गरज के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।